ऊपर तत्व नहीं, असमूर्त तत्व है कृष्ण, उनसे बढ़कर के कोई तत्व नहीं। बदंति तत्व विदस्तत्वम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति स्वयं भगवानेति, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। और इसीलिए और शास्त्रों में बतलाया गया, श्रीमद् भागवत में भी बतलाया गया क्या, एति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, स्वयं बतलाया गया। और भी बतलाया गया है सब जगहों में, कृष्ण से बढ़कर के कोई परतत्व नहीं, इसलिए कृष्ण ही परम तत्व है, उनसे श्रेष्ठ कोई तत्व होने की कोई संभावना नहीं है, एक ही परतत्व है, दो है नहीं है, शक्ति भी उसी के अंतर्गत है, इसलिए कृष्ण से कोई श्रेष्ठ होने की तो कोई बात कल्पना भी नहीं कर सकता। किंतु एक रस तत्व भी है, हमारे गोस्वामियों ने बहुत गूढ़ रहस्य बतलाया है। ये रस तत्व क्या है, रूप गोस्वामी ने बतलाया, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचि रुद्ध ताल का पाली कलित लालिता श्यामो राधा प्रयान विधुर जय। तो यहां पर रस भी किसको बतलाया, अखिल रसामृत मूर्ति कौन, किसको बतलाया, राधा प्रयान विधुर, राधा के परम प्रिय जो चंद्र हैं, चंद्र माने कृष्ण चंद्र हैं, इनकी जाति से ही ये भक्ति स्वामी सिंधु आरंभ किया। इसलिए तत्व के विचार से कृष्ण से कोई बड़ा नहीं होगा, और रस की दृष्टि से यहां पर रस कौन है, रस है कौन, कृष्ण ही रसस्व, अखिल रसामृत, जितने प्रकार के द्वादश रस भी कहे जाएं, इसके अतिरिक्त भी कोई रस हो तो उसकी मूर्तिमान विग्रह कौन है, राधा जी को रस की मूर्ति कहा जाएगा कि नहीं, नहीं, किसको कहा जाएगा। इसलिए रसो वैसह कृष्ण को बतलाया गया, तो यह रस स्वरूप ही कृष्ण है। किंतु और इसके अतिरिक्त भी एक विचार है, वो विचार ये है कि कृष्ण तो रस स्वरूप भी है, रसिक भी है, दोनों है ना, किंतु रसिक एक और है, कौन है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। शक्ति शक्तिर मतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद है, इसका पृथक रूप से कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे मृग मदगन मृग क्या और उसका गंध, सूर्य और उसकी मृगनाभि और उसका गंध, और सूर्य उसकी ताप, कोई भी भेद नहीं है, कोई अलग कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु कृष्ण की अघट दुर्घट घटन पटी ऐसी शक्ति, अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति संपन्न है। ये कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति कौन करता है, कौन आखिर, यदि राधा जी नहीं होती, उनकी शक्ति नहीं रहती, तो ये अखिल रसामृत मूर्ति होते क्या। अब इस पर ये विचार करने से ये तो हुआ कि कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, और उसके द्वारा रुचिरुद्ध तारका पाली, एक तारका एक पाली और एक ललिता एक श्यामा, ये चार प्रकार की नायिकाओं को बतलाया गया है, पक्ष विपक्ष सुहृद और तटस्थ, इनमें से एक एक का लिया गया है, ये चारों में से। बहुत समय लगेगा इसलिए अभी इसको हम नहीं अभी कुछ विस्तार से वर्णन करें, केवल समझने के लिए करें। और इसके बाद भी राधा प्रियान, राधा के जो प्रिय हैं वो तो विधु हैं, उनकी यहां पर जयदान सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया रूप गोस्वामी ने। अब कृष्ण तो रस हैं और रसिक भी हैं, ये बात ठीक है, किंतु इस रस को, कृष्ण के रस को कौन आस्वादन करने वाला है विश्व में, कौन अधिक, कृष्ण स्वयं वो रसिक हैं, अपने रस को अपना रस का आस्वादन करने वाले हैं कि नहीं, या उनसे अधिक कोई है जो कृष्ण के रस को आस्वादन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जगत में हमसे बढ़ करके कोई नहीं है, रूपवान नहीं, मधुर नहीं है, नहीं? जगत हमारे रूप को देखकर के मुग्ध हो जाता है, किंतु हम भी किसी के रूप को देखकर के मुग्ध हो जाते हैं, जगत का हृदय हमको देख करके सुशीतल हो जाता है, किंतु हमारा हृदय सुशीतल कब होता है, राधा जी को देख करके। यहाँ पर सुशीतल कृष्ण होते हैं, किंतु अब ये विचारणीय है कि कृष्ण जो रस स्वरूप हैं, इनको देख करके राधा जी को अधिक रस का आस्वादन होता है, आस्वादन राधिका जी में है, या राधिका जी में जो रस है उसका आस्वादन करके, या अपने में जो रस है, कृष्ण रसिक हैं, इनको अधिक रस आस्वादन होता है, रस आस्वादन किसको होता है, ये विचार, ये रस का आस्वादन कौन करता है, रसिक तो कृष्ण भी हैं, तो कृष्ण अपने रस को आस्वादन करके अधिक आस्वादन अनुभव करते हैं, या राधा जी को कृष्ण के रस को आस्वादन करके अधिक रस मिलता है, किसको, राधा जी को अधिक आनंद होता है। इसलिए कृष्ण कहे विचार करिते कि विपरीत, हम सब जगत के गुरु हैं, किंतु हमारा भी प्रेम का कोई गुरु है, हम राधिका जी को देख करके या अपना प्रेम देख करके आस्वादित आस्वादन करते हैं, किंतु हमसे कोटि कोटि गुण आस्वादन करती है कौन, श्रीमती राधिका, हमारे रूप गुण माधुर्य वेणु माधुरी इत्यादि पागल हो जाती हैं, मैं पागल नहीं हो पाता। इसलिए इस रस को आस्वादन करने वाला और एक आस्वादन करने वाली में कृष्ण ही श्रीमती राधिका के रूप में, अपने विलास के रूप में स्वयं ही एक ये राधिका के रूप में प्रकटित होकर के वो और रस को आस्वादन करने वाली है। किंतु है रस कहां, रस है कहां, कृष्ण में ही, किंतु आस्वादन कौन करता है, राधिका। इसलिए करते हैं जैसे मैं वैसा रस आस्वादन नहीं करता, इसे जब तक कि राधा जी के भाव हमारे अंदर में नहीं हो, इसलिए राधा जी का भाव मंगनी मांग करके चुरा करके जैसे तैसे ग्रहण करके अपने भाव का रसास्वादन करते हैं, किंतु फिर भी राधिका के समान नहीं कर सकते, जितने भी भाव ले, उधार लेने वाला कितना उधार लेगा। इसलिए राधिका जी है रसिक सोरोमणि, कृष्ण भी उनसे रस की शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस विषय से राधिका जी का महत्व कुछ अधिक है। और तत्व की दृष्टि से कौन है, कृष्ण है, इसमें कोई भी बात नहीं। इसके संबंध में हम लोग चैतन्य चैतामृत लेकर के विचार करेंगे, एक रस की दृष्टि से, एक तत्व के विचार से, एक प्रेम के विचार से। ये प्रेम कृष्ण में है अधिक न राधिका में है, राधिका में है। इसलिए इन सब पर हम लोग विशेष विचार हम कल सवेरे से करेंगे, और अब जितने दिन तक है थोड़ा थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। हम अधिकारी तो वैसे नहीं है, तभी कुछ जो चैतन्य चैतामृत इत्यादि में जो लिखा है उनको हम लोग बांच लेंगे और थोड़ा सा उसकी व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आज यही कह करके श्री राधिका के चरणों में आप सबके लिए वो कृपा करें प्रार्थना करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बोल दो सर। एक कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, किंतु परदेवता जो कहा गया किस दृष्टि से, राधिका के भी परदेवता वो हैं, इसलिए क्यों, प्रेम का स्वादन उनमें अधिक है, किस में, श्रीमती राधे, इसलिए परदेवता भी कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया। कृष्णमयी देवी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज एक्सप्लेन्ड ऑल्सो विविडली एंड मार्वेलसली इन चैतन्य चैतामृत में उन्होंने वर्णन किया है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। कृष्ण को यहाँ पर परदेवता नहीं कह करके राधा जी को बतलाया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में सामंजस्य करना गड़बड़ हो जाएगा, किंतु सामंजस्य हमारे गोस्वामियों ने किया। परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति क्यों कहा, सम्मोहिनी, अरे कृष्ण को भी सम्मोहन करने वाली हैं, ऐसी ये श्रीमती राधिका जी जय युक्त हों, और हम कल हम लोग वर्णन करेंगे। वेल ग्लोरीफाई श्रीमती राधिका।